نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 95 آیت نمبر 154 سے 168 سورۃ الاعراف. لیسن نمبر 95 آیت نمبر 154 ٹو 168 سورۃ الاعراف. چند باتیں آج کے سبق کے ناطے سے کہ آج ہم اس میں کیا دیکھنے والے ہیں. قصہ موسیٰ ہی چلے گا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات کیے ان کا تذکرہ ہے، لیکن آج کے سبق میں خاص طور پہ جو چیز آپ کو نمایاں دکھے گی نا، وہ ہے اللہ کے حکموں کو بدلنا. کل تک تو بنی اسرائیل یہ مطالبے کرتے تھے اور خواہشات کرتے تھے کہ کوئی نبی آئے اور فرعون سے بھی چھڑائے اور ہماری اصلاح کرے. اب جب نبی آگئے، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے تورات دے دی. اب جب تورات آ گئی جس کو مانگ رہے تھے، تو اس کے بعد کیا رویہ ہوا؟ یعنی آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کتاب آ جائے تو لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں اور اس کا پھر ان کی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے. دوسری آج کے سبق کی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں جو تورات اور انجیل میں تھیں. شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کا تورات میں ذکر تھا، اور آپ کو یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے بیٹوں کو. تو آج انشاءاللہ ہم لسٹ تیار کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات تورات اور انجیل میں تھی، اور اسی کے ناطے سے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی امت کی بھی کچھ باتیں اس میں موجود تھیں. پھر اس کے بعد آخری ٹاپک جو ہمارے آج کے سبق میں آئے گا، وہ صحابہ سبت کے قصے میں سے عملی پہلو، کہ جب قومیں کتاب کے آنے کے باوجود اپنی مرضی سے حکموں کو ادھر سے ادھر کرتی ہیں، حکموں کو وہ مسخ کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو مسخ کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان آیات کا حق ادا کروائے. اب ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 154. فلما سکت ام موسی الغضب، اور جب چلا گیا موسیٰ سے غصہ. سکت کا لفظ اردو میں سنے، سکوت، ساکت رہا، چلا گیا، ان آ گیا نا، یعنی غصہ چلا گیا موسیٰ کا. کیا کیا؟ اخذ الالواح، تختیاں اٹھا لی. کیا تھا ان میں؟ ففی نسختہا ھدى و رحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، اس کی تحریر میں تھی رحمت اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہاں دیکھیے وہی واقعہ آگے چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو آیا لیکن ٹھہرا نہیں. یہاں یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، ایمان والے کو خلاف حق بات اور چیز دیکھ کر غصہ آتا تو ہے، جیسا بھی تھوڑا سا پہلے آ رہا تھا، لیکن وہ اس کے دل میں ٹھہرتا نہیں ہے. جیسے آپ مائیں ہیں، آپ کو بچوں پہ غصہ دن میں 10 دفعہ آتا ہوگا اور 12 دفعہ پیار آتا ہوگا، تو یہ اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ کو غصہ تو آ گیا، تو موسیٰ نے غصے میں کام نہیں چھوڑا. فوراً غصے کے دور ہوتے اخذ الالواح، یہ ہے بندہ مومن کی تصویر. ہم بعض دفعہ اپنے کسی بھی جذباتی رویے کی وجہ سے کتاب چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں. عموماً دیکھیے کہ ہماری امت کا مزاج کیا دکھتا ہے، آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں کام نہیں کروں گی، آج میں بہت خوش ہوں، آج ایکسائٹمنٹ بہت ہے، آج میں سیڈ ہوں، آج میں ڈپریس ہوں، آج مجھے بڑا غصہ آیا ہوا ہے. ہر عذر کے پیچھے یہ ہے کہ مجھے کام نہیں کرنا. پھر کبھی ہم کوئی خبر سن لیتے ہیں، کوئی پریشانی خاندان کی آگی سامنے، میں کام نہیں کروں گی. اب کسی جگہ پتہ چل گیا کوئی رشتہ ہونے لگا ہے، ایکسائٹمنٹ ہو گئی، میں کام نہیں کروں گی. تو بندہ مومن جذباتی جو مرحلے ہوتے ہیں نا، اس میں کام نہیں چھوڑتا. یہاں سے یہ پہلی بات ہے عمل کی، جس پہ شاید کبھی غور بھی نہ کیا آیت پڑھتے ہوئے کہ یہ بھی ایک اس میں عمل کا نقطہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اگر ہم سیرہ کی روشنی میں دیکھیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب صبح سویرے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلا. صبح سویرے نکلنے میں کچھ جذباتی قربانی ہوتی ہے، ایموشنلزم ہوتا، اپنی پیاری بیویوں کے پاس سے اٹھ کر اللہ کے کاموں کے لیے آنا کوئی آسان کام ہے؟ تہجدوں کے لیے آنا، حنزلہ کی مثال یاد کر لیجئے، کیسے اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کے آگے. تو یاد رکھیے، دین کے کام میں जब तक इमोशनल सेटअप नहीं होगा काम नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैंने दीन का काम तब करना है जब मेरे घर वाले सब मुझे सर्टिफिकेट दे दें, वो उसको क्या बोलते हैं कि नो ऑब्जेक्शन का एनओसी दे दें, बेगम एनओसी जारी है आज के बाद आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप दिल खोल के काम करें, फिर आप करेंगी ना तो वो काम आपका वो नहीं होगा जो इन सारे जज्बाती हमलों के दौरान होगा। लफ्ज नुस्खा आया है नीन नून सीन खा, हम इसको सुनते हैं तो हमारे दिन में डॉक्टर साहब का नुस्खा आ जाता है जो बचपन में हमें मिलता था हा? लेकिन नस्खा कहते हैं लिखने को, नुस्खा कहते हैं लिखी हुई चीज। मजामीन और किताब के मानों में है, ये असल भी हो सकता है और नकल भी, यानी ओरिजिनल कॉपी भी होती है और इसकी नकल भी होती है। मुराद यह कि जो असल तख्तियां आई थी ना किताब की अल्लाह की तरफ से वो उठा ली। बास कहते कि नहीं वो तो पहले ही दिन टूट गई, उनकी एक कॉपी बनवा कर फिर उसको तहरीर करवाया। तो रात के बारे में जब सोचे ना तो एकदम दिल के अंदर कुछ होता है। मैं सोचती हूँ कि किताब तो कैसी किताब है, आते ही पहले दिन टूट गई। देखिए बनी इसराइल ने तो अपनी किताब को बाद में टुकड़े टुकड़े किया ना, पर रखुदीन हम, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो किताब पहले दिन टूट गई। आज उम्मत मुस्लिमा कुरान की जाहरी ताजीम जितनी करता है इस पे किसी को कोई इनकार नहीं है, अमल करे ना करे लेकिन हम इसको पीछा नहीं करते। हम जिस अलमारी में नीचे जूते रखे हम उस अलमारी में कुरान नहीं ऊपर रखते और हम कुरान को हाथ नहीं लगाते। और कई कहानियां जो आप सबने भी इधर से उधर सुनी होंगी, लेकिन आप देखिए कि तौरात वालों ने तो किताब के साथ जो मामला किया उसकी एक किस्म की छोटी सी झलकी हमें इधर ही दिखती है। है क्या तो उसमें हिदायत और रहमत, मगर किन को, लिरब्बिहिम यरहबून, इससे क्या पता चलता है। किताब से हिदायत और रहमत सिर्फ उसको मिलेगी जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा। अल्लाह के खौफ के बगैर आप हज और उमरा भी कराएंगे ना तो सिर्फ एक वो एक ट्रिप होगा, एक्साइटमेंट होगा कुछ, लेकिन अल्लाह के खौफ के बगैर कुछ नहीं होता। नबी सल्लम ने जो फरमाया पहले वो नोट कर लें कि बंदे को जब गुस्सा आता है ना तो उसका चला जाना बेहतर होता है। चार किस्म के लोग होते हैं गुस्से के एतबार से। नंबर एक, जिनको गुस्सा जल्दी आता है जल्दी चला जाता है। दूसरे वो जिनको देर से आता है और देर से जाता है। तीसरे वो जिसको जल्दी आता है देर से जाता है। और चौथा कौन, जिसको देर से आता है और जल्दी जाता है। बेहतरीन कौन है, सबसे आखिर वाला। हम सब अपने आप को देखें, कभी गुस्सों को पाला ना करें, आपके चेहरे पर झुर्रियों की सूरत में नजर आना शुरू हो जाएगा और आपका रंग जल जाएगा। गुस्से को पालना ऐसे ही है कि जैसे बंदे ने अपने लिए तकलीफ को पाल लिया। तो लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लगता है कि गुस्से में आए तो थे खिलाफ शरीयत काम को देखकर, लेकिन उसके बाद चले गए, मिशन नहीं भूला, चलते गए। ये नहीं कहा मेरा मूड नहीं रहा, अब इन तिलों में तो कोई तेल नहीं है, ये तो मानेंगे नहीं है, नहीं। संजीदा आदमी जो होता है ना वो कभी अपने मिशन से गाफिल नहीं होता। एक बहुत ही अच्छे शख्स थे जिनके बारे में मैंने एक बार सुना कि वो जैसे काम कर रहे थे अपने ऑफिस में तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्होंने नोटिस ही नहीं लिया। बाद में लोगों ने पूछा कि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था, तो आप कम अज़ कम सलाम तो करते। कहते मुझे पता ही नहीं चला, मैंने उठा के नजर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब बंदा काम कर रहा होता है ना तो वो हर वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। और हम सभी अपने लिए इसमें लिखें, आप देखें दूसरों को बातें 100 कह लें लेकिन जब आपका अपना अमल उस पर नहीं होगा तो आपको फिर उस चीज से ज्यादा फायदा नहीं होगा। आज इसमें भी लिखें, बच्चों के गुस्से में क्या करती हूँ, शौहर के गुस्से में क्या करती हूँ। बस अब हमारी नमाजों में खुशबू ही नहीं रहती, उसमें भी कुड़ते रहते हैं जलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हम सब अपने आप को जब अल्लाह के खौफ से रखेंगे ना तो हमें कंट्रोल करना आ जाएगा अपने आप को। आप देखिए डर जितना ज्यादा होता है ना उतना अल्लाह की किताब की तरफ रुजू भी ज्यादा होता है और सेल्फ कंट्रोल भी आता है। अब यह लफ्ज है यरहबून, रहब, तो डर के लिए तो बहुत सारे लफ्ज है ना, तो पीछे आपने पढ़ा तकवा वालों के लिए हिदायत है, खुदा लिल मुत्तकीन, ठीक है। तो यहाँ रहब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि रहब जो होता है ना इसके अंदर मोर स्पिरिचुअलिटी होती है, रहबानियत का लफ्ज ना, बस ये वही है। यानी इस तरह का खौफ जो बंदे को दूसरी तरफ ले जाए। और आपको पता है कि सारे मुहर्रकात यानी मोटिव जो होते हैं ना किसी चीज पे, किसी बंदे को मोटिवेशन देने वाले, उसमें खौफ सबसे सख्त है। बस आप देखिए, आपको भूख लगती है ना, हम सबका भूख का एक फैक्टर कितना स्ट्रांग है, लेकिन आपको डर लगे किसी बात से, अब खौफ में आए तो भूख याद रहती है। टेस्ट का डर भूख खत्म कर देता है, ऑपरेशन का डर भूख खत्म कर देता है, गम खुशी हर चीज। आप बहुत दुखी थे एकदम, आपको लगा कि बाहर चोर आ गया, अब गम किधर गया, खौफ में ढल गया। आप बहुत खुश थे किसी जगह बैठे हुए मजे में, एकदम किसी चीज कीड़े को देख लिया, तो क्या पता चला कि सबसे बड़ा मोटिव खौफ है। भूख लगती है ना तो खाना ढूंढते हैं, लेकिन खौफ आ रहा हो ना कि पता नहीं कमरे में कौन है, किचन में जाऊंगी तो अंधेरे से गुजरना है, तो चुपके से कहते हैं दुबक के बैठे रहो, मैं नहीं उठ रही अंधेरे में जाने में। भूख को दबा के बैठ जाएंगे और खौफ आएगी। अब आप इसको ले आइए, इस खौफ को, यदून रब्बहुम खौफुम व तमम, ये है वो खौफ जिसको अल्लाह ने जहन्नम के खौफ में ढाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो ही चीजें हैं जिसके साथ एक बंदा जन्नत तलब कर सकता है, एक खौफ और एक रहबत, उम्मीद। डर का रिएक्शन फौरी होता है, एक लम्हा नहीं बंदा लगाता उठ के भागता है। मैं अगर आपसे कहूँ ना कि जरा नीचे से बैग ला दीजिए, तो हो सकता है 4-5 मिनट में आए, और आपसे कहूँ कि आप सब नीचे चले जाएं, छुट्टी हो गई, तो हो सकता है आधा घंटा लगा दें आप लोग निकलने में, और खुदा ना खास्ता इधर कोई सायरन बजे अभी और आवाज है हॉल खाली करें, तो कितने मिनट या सेकेंड्स में ये हॉल खाली होगा। ये किस चीज ने आपको भगाया? खौफ ने। तो अल्लाह के नबी की बहुत ही खूबसूरत रिवायत है कि कितना अजीब है वो शख्स जो जहन्नुम से भी डरता है, यानी जहन्नुम से पनाह मांगता है और सो रहा है, और जो जन्नत मांगता है फिर भी सो रहा है। मतलब ये कि बेखौफ होके बैठा हुआ है। सुस्ती खत्म हो जाती है डर से। अगर आपको सुस्ती लगती है ना अपने अंदर, क्या करूं, तो वो जहन्नुम के जलते हुए अंगारे याद करें, वो शोले याद आएंगे, आप देखिएगा सुस्ती सुस्ती नहीं रहती। डर तो इंसान के अंदर की गिरहों को खोल देता है, वो चीजें भी याद आ जाती हैं जो सोई होती हैं, जैसे आप कहें कि इंसान की सोई हुई सलाहियतों को जगा देता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अपना और जहन्नम का इतना खौफ दे दे। अल्लाह का खौफ कौन सा भला, ले रब्बिहिम, कौन सा रब की नाराजगी का खौफ। अल्लाह का खौफ कोई थानेदार वाला खौफ नहीं है दिलों में, या अल्लाह ताला कोई ऐसा नहीं है कि कोई खतरनाक चीज है, कोई सांप शेर का खौफ नहीं है। अल्लाह का खौफ यह है कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो, वल्लाह ही आपको बिस्तरों से उठाएगा और ये आपको रातों को जगाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपना हकीकी खौफ दे दे। फिर इसके बाद अगली आयत में देखते हैं 155, वख्तार मूसा कौमहु 70 रजुलन लिमीकातिना, और इंतखाब किया मूसा ने अपनी कौम से 70 अफराद का हमारे वक्त मुकर्रा के लिए। फिर क्या हुआ, फलम्मा अखजतहुमुर रजफा, फिर जब इनको पकड़ लिया जलजले ने, काल रब्बी लो शीता अखलकतहुम मिन कब्ल व इयाज, तो मूसा ने अर्ज किया है मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता तो हलाक कर देता पहले ही इन सबको भी और मुझे भी, अतुहलिकुना बिमा फ़अलस सुफहा उमिन्ना, तो क्या तू हमें हलाक कर देगा हम में से कुछ बेवकूफ लोगों की हरकत की वजह से। इन ही इल्ला फितनतुक, मगर ये तेरी तरफ से एक आजमाइश होगी, तो दिल बिहा मंतशा व तहदी मंतशा, तो इसके लिए जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है, लेकिन अंत वली युना, बेशक तू हमारा वली है, हमारा दोस्त है, अंत वली युना, तू हमारा वली है, दोस्त है, फिर लना, बस बख्श दे हमको, वरहमना वंत खैरुल गाफिरीन, और बख्श दे हमको, तू बेहतरीन है सब बख्शने वालों में से। यहाँ पे आयत पूरी हुई, लेकिन बात अगली आयत में भी जाती है, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसनतन व फिल आखिरह, और तू हमारे लिए इस दुनिया की जिंदगी में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, कि वही बात है जो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, जो नबी सल्लम की उम्मत को सिखाई गई। इन्ना खुदना इलैक, बेशक हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अब ये मूसा का कलाम था, आगे अल्लाह का कलाम अलग होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। बहुत ही लंबी बात है, जिसको आप कहना कि एक बात में कितनी बातें हैं, आइए देखते हैं। वख्तारा मूसा, चुन लिया मूसा ने, वख्तार में क्या छुपा हुआ है, खैयरा खा या रो, ये जो इस्तखारा होता है ना, वो भी ये लफ्ज होता है, खैर का तलब करना, ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं आपको इख्तियार है, वो भी ये लफ्ज है। आप बड़ी खुद मुख्तार हैं, वो भी यही लफ्ज है, ठीक है। चुनना, ये कौन थे, किनको मूसा ने चुना, लफ्ज तो 70 का आ गया। तो इसके बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ राय हैं, जिसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग राय क्या है कि बछड़े को पूछने का जुर्म इज्तमाई था, कौम इन्वॉल्व हो गई थी ना, ये अलग बात है, तीन हिस्सों में बटे थे, पीछे बात की है ना आपके साथ। कहते हैं कि चूंकि इज्तमाई जुर्म हुआ था ना कौम से, तो अब इज्तमाई तौबा की जरूरत। इससे क्या पता चलता है कि कुछ कामों के लिए तो पर्सन्स की अपनी तौबा काफी होती है, लेकिन कुछ गुना इस तरह कौमों की आदत बन चुके होते हैं, कौमों का मिजाज बन चुके होते हैं, कि फिर उसमें वाकई इज्तमाई तौबा की जरूरत होती है। फिर हकीकत में उसके लिए इंसान जितनी मर्जी ख्वाहिश कर सके करे, ठीक है। दूसरी राय इसके बारे में यह है कि जब अल्लाह ताला के अहकामात जो तौरात की तख्तियों की सूरत में मूसा को मिले थे, पहले तो आते ही वाकई इतना संगीन हो गया कि जिसकी वजह से बात बिगड़ गई। खैर जब बात आई गई हुई तो मूसा ने उनको तौरात के अहकामात सुनाए, अब वो हुक्म उनकी उम्मीद से खिलाफ थे। जैसे कुरान पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ आ रही होती हैं। अब उन लोगों ने एतराज किया, कहते हैं कि हम कैसे मान जाएं कि ये आपको अल्लाह ने दी है, शायद आपने खुद बैठ के लिख ली, और वो 30 की बजाय 40 दिन शायद इसीलिए लगे कि आप बैठ के लिख रहे थे। नबियों पे इल्जाम और शक इस कौम का शुआर था। तो कहते हैं कि उस पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी ख्वाहिश पूरी की कि कहने लगे हमें साथ ले जाओ। तो 12 कबीलों में से 70 लोग चुने और उनको जाकर देखा। अब यहां से तो गए थे कि हम अपने कानों से सुन लें कि आपके ऊपर वही आती है, पीछे आप पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, वहां जाके इन्होंने क्या कहा, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। तो गोया कि आप कह लीजिए हुज्जतबाजियां। सूरह बकरा की आयत 55 में हम ये बात पढ़ चुके, वइस कुल तुम या मूसा लन नूमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, जब तुमने कहा कि मूसा हम हरगिज ईमान तुझ पर नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को कुल्लम कुल्ला न देख लें। यहाँ लफ्ज आए हैं रजफा, वहां क्या आए थे, सायका, बिजली गिरी उनके ऊपर, दोनों ही आए होंगे, ठीक है। लिहाजा ये भी एक वजह आती है। आयत के इस हिस्से की एक तीसरी भी तफसीर है कि कोई वजह नहीं थी, बस वैसे ही अल्लाह का जिक्र और दुआएं करने गए थे, और ये कह बैठे कि जो हमें दिया है वो किसी और को ना दे, इस पर पकड़ होगी। तो हजरत मूसा डर गए, मूसा अलैहि सलाम को लगा कि ये क्या हुआ, फलम्मा अखज़त हुमुर रजफा, आसमान से बिजली आई और उनको जला दिया। काला रब्बी लौ शिअ्त अख़लफ़तहु मिन क़ब्लु व इय्याया, अब मूसा की जरा सिचुएशन नोट करें, उनकी कंस्ट्रडी में उनके ग्रुप में 70 लोग इबादत करने गए और बगैर किसी हादसे बगैर किसी एक्सीडेंट के सारे मर गए। मूसा आके जवाब क्या देंगे, सारे मर गए, वो कहेंगे किधर है लाशें, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लोग 100 बातें पूछते हैं ना। तो अल्लाह ताला के सामने मूसा अलैहि सलाम की इस वक्त हकीकत क्या थी, बड़े ही बेबस थे कि अल्लाह ये क्या किया आपने, अगर इनको मारना था तो मिन कबल इससे पहले ही मार लेता, पहले से क्या मुराद है, यहाँ आने से पहले इनके घरों में इनको मार देता, जिस वक्त ये लोग अपने काम धंधों में लगे हुए थे वहां आप इनको खत्म कर देते, लिहाजा भैया या मुझे भी मार देता, यानी मैं कैसे फेस करूं इनके इतने नाफरमान किस्म के सवाल, और इनके तो रवैये ही इतने सख्त हैं कि ये तो मुझसे बहुत पूछेंगे। और आपको ये तो पता है कि बनी इसराइल को बाल की खाल उतारने की आदत थी, और ऐसा बंदा कभी मुतमईन नहीं होता। ये लिख लें, जो लोग बाल की खाल उतारते हैं ना, यकीन करें वो एक वक्त आते नफसियाती मरीज बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज में से फिर कुछ निकालना है, फिर निकालना है, खोजी किस्म के लोग, डेप्थ में जाना। ऐसा बंदा चलिए किसी अदालत में मुकदमे का फैसला कर रहा है फिर तो शायद कामयाब होगा, लेकिन जिंदगी की मामलात में ये आदत अच्छी नहीं होती। और खास तौर पर आप देखिए एक मजहबी लीडर, हजरत मूसा कौन है इधर इस वक्त, एक लीडर है। अब ऐसी कौम अगर इतनी हुज्जतबाजियां करती है तो हर बात का जवाब तो वो उनको नहीं दे सकते थे ना, हर बात उनको समझ भी नहीं थी आनी, इसलिए कि अभी उनका मुकाम वो नहीं था। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बता के हम सबको बता दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद कौम से डर रहे हैं। क्या पता कभी आपको भी नहीं अपने एक बच्चे से डर लगता, मुझे एक माँ याद आती है, कहती अपनी छोटी बच्ची थी 10-12 साल की, कहती से मैं बड़ा डरती हूँ, क्यों, कहती जरा मेरा स्कार्फ ढीला, कहती अम्मी आपके बाल नजर आ रहे, जरा मैं दुपट्टे पतले में बाहर जाऊँ, अम्मी आपका दुपट्टा किधर है, कहती मैं इससे बहुत डरती हूँ। अब आप बताइए ना, तो बाज दफा ऐसे लोगों से सब डरते नहीं, मेरा ख्याल है जान छुड़ाते हैं, ये गल पड़ जाएगा, इसने इस्लाम की भी कर ली इससे बात तो इसने 15 मिनट तो आपके ले लेने हैं। तो लिहाजा यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के इस अमल से हमें ये नहीं सोचना कि मूसा अल्लाह ताला के नौज बिला उस फैसले पे कोई इतराज कर रहे हैं या मौत का वक्त चेंज कर सकते हैं या करा सकते हैं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी नाते से ये सब कुछ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मौत तो आपके हाथ में। और इधर से ये भी पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये यकीन था कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। फिर साथ ही अपनी बात को और बढ़ाते हुए कहते हैं, अतुहलिकुना बिमा फअलस सुफहा मिन्ना, क्या आप हमें हलाक कर देंगे कुछ बेवकूफ लोगों की हरकत से। अब ये क्या था, यानी बिमा फअला क्या है? तो बास कहते हैं अल्लाह को देखने का मुतालबा, वही जो उन्होंने कह दिया था कि हत्ता नरुल्लाह जहरा, चंद लोगों ने कहा है। बास कहते हैं इन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह हमें वो दे जो किसी को दुनिया में ना दे। और तीसरी, आप पीछे अगर टैक्स को देख लीजिए तो बछड़े की पूजा, यानी ये चंद लोग जो गलत काम करते हैं तो क्या आप हमें इन सबकी वजह से पकड़ेगा, चंद जाहिलों की हरकत से। इन अल्लाह फितना, अब ऐसे लग रहा है जैसे खुद से बातें कर रहे हैं, अल्लाह ऐसा ना कर, अच्छा फिर तो दूसरों के लिए हलाक करेगा, अच्छा नहीं अल्लाह मैं समझ गया, इन ही अल्लाह फितना तुक। ये है वो रीजनिंग जो बंदा मोमिन अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइशों पे करता है। इसमें अमल की बात है, बहुत बड़ी आजमाइश है मूसा पे, 70 लोग मारे जा रहे हैं, बजाय इसके कि इसके अंदर से खैर की बजाय कुछ और बातें लेते, हजरत मूसा अल्लाह से बातें करते हुए दिखते हैं। अच्छा ये वजह होगी, अच्छा ये वजह, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला को कॉर्नर दे रहे हैं कि हाँ हाँ अल्लाह ताला ने ये ऐसा नहीं किया, इसकी ये वजह, अच्छा अच्छा ये नहीं, अच्छा फिर ये भी नहीं है, तो कैन ही अल्लाह फितना तो। और लफ्ज फितना तीन तरह से आता है, नंबर एक ये तेरा इम्तिहान है, और ये तेरी आजमाइश है, और ये तेरा अजाब है। ठीक है, अल्लाह सुबहान तआला यही बात जहां बताते हैं कि मूसा अलैहि सलाम ने ये बात सामने रख दी कि किया तो काम कुछ लोगों ने बुरा है और तू पकड़ सबको रहा। शायद मूसा को ये खौफ आ रहा था कि अल्लाह मुझे इसलिए पकड़ा कि मैंने इनको मना नहीं किया अमर बिल मारूफ से, गफलत की वजह से, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला के साथ इस तरह की बातें करके तो दिल भी ही मंतशा व तहदी मंतशा में अल्लाह के पूरे इख्तियार और उसके अलहदी और अलमुदिल होने का इकरार करते हैं। हाँ अल्लाह ये तो पता है कि हिदायत और गुमराही तेरे हाथ में। देखिए बास दफा फितने भी लोगों की हिदायत का जरिया बन जाते हैं। जिंदगी में बास दफा कोई आजमाइश आई होगी आपके ऊपर, सोच के देखें कई तरह की आती हैं, माली जिस्मानी खानदानी माशर्ती माशी। आप देखिए कि जब वो हालात आते हैं ना तो बंदे को अपने बारे में सोचने का बहुत मौका मिलता है। और ऐसे वक्त में जब कभी कोई आजमाइश आए, सोचें अपने बारे में, सोचें गौर करें, आपको अपनी को गलती नजर आए, पहचाने फिर इसलाह कर लें। जो ही आप इसलाह करेंगे ना, आप देखेंगे उस आजमाइश का रुख पलटने लगा। बस अगर आप देखें आप अपने बच्चे को चॉकलेट खाने से मना करें तो बच्चा क्या कहेगा कि मेरी माँ दुश्मन है। आप कहते मैं नहीं कहती भाई, मैं नहीं मना करती, मेरा बच्चा मुझे बुरा कहेगा। आप बच्चे को मना ना करें, बच्चा खूब चॉकलेटें खाए, रात को दांत में दर्द होगा, क्या सिर्फ बच्चा परेशान होगा, आप भी होंगे ना। बिल्कुल यही बात है, हम इस दुनिया में जब लोगों को बुराइयों से नहीं रोकते तो फिर हम भी परेशान होते, खुशी हो या दुख हो जाता है। लिहाजा ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने इनको मार दिया, और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि उनकी दुआ से फिर अल्लाह ताला ने जिंदा भी कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम सब की तरफ से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तो हमें माफ कर दे, तू माफ करने वाला है, अंता वलीयुना, यानी ठीक है तूने हमें इस वक्त इस आजमाइश में डाला लेकिन हम स्टिल वी लव यू, तुम्हारा वली है, फ़ग़फ़िर लना। क्या पता चला, ये चुने हुए लोग थे ना वख्तार और मूसा, इधर से क्या पता चला कि चुने हुए लोग भी जलजले में खत्म हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम कितने तहम्मुल से 70 लोगों को मरता देखकर भी होश गुम नहीं कर रहे, शिकवा नहीं किया, तस्लीम किया, बख्शिश तलब की, इसको आजमाइश समझा, मदर नेचर नहीं कहा कि हाँ अल्लाह ये जलजले तो आते ही हैं। देखिए जब भी जिंदगी में कोई अप्स एंड डाउन आता है ना, कोई परेशानी आती है, साथ ही शैतान हमारे दिलों में ख्यालात डालता है, क्या तुम तो इतने अच्छे काम करती हो, अल्लाह ने फिर देखो तुम्हारे ऊपर मुश्किल डाल दी। कभी आपने सुना लोगों को कहते हैं पता नहीं अब क्यों आती है मुश्किलें हम पे, अब तो नमाजें भी शुरू कर दी हैं, या कोई आप में से मेरे में से के अब क्यों हम पे मुश्किलें आ रही हैं जी, अब तो हम अल्लाह की किताब भी पढ़ने लगे, तो देखिए, किताब का पढ़ना या नमाज का पढ़ना बंदे को मुश्किल प्रूफ नहीं बना देता, यह आजमाइश है। अल्लाह हमें अच्छे और बुरे हालात में डालकर देख रहा होता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो लिहाजा जब कभी जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, अल्लाह से बदगुमान ना हो। ये नहीं कहना अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, अल्लाह निखारता है, तपाता है। अब एक तकलीफ तो अल्लाह की तरफ से आ गई है ना, लेकिन अब आगे से फिर खैर मांगते हैं। कभी आपके बच्चों को कोई तकलीफ हो जाए, आपको कोई हो, तो अगली जिंदगी में खैर मांग लें, अगले बच्चों की खैर मांग लें। अगर एक बच्चा दुनिया से चला गया कि अल्लाह तेरी खैर के दरवाजे बंद नहीं, जिंदगी में कितने दरवाजे बंद होते हैं फिर खुल जाते हैं। चीजें रोज खत्म होती हैं, हम और ज्यादा भर लेते हैं घर में, एक चीज जलती है एक और आ जाती है। तो ये इंसान की जिंदगी का असूल है, इस पे नजर रखने वाले मुश्किलात में घबराते नहीं है।